माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदनन्दन ब्रज जन रंजन यशोदनन्दन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की कलियुग पावन श्री हरे कृष्ण महामंत्र की स्पॉन्ज स्पॉन्ज करंट मार रहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जो लोग भी खड़े हैं कृपया करके थोड़े टाइम के लिए बैठ जाइए, थोड़ा भागवत कथा सुनेंगे, फिर आप लोग के लिए अच्छा संडे फीस्ट का प्रसादम भी है। तो जो लोग खड़े हैं आके यहाँ पर कृपया बैठिए, थोड़ा चर्चा करेंगे 10-15 मिनट श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में। इतना दूर दूर से आप लोग आए हैं तीर्थ यात्रा में धाम के पर, तो धाम में आके जब धाम कथा श्रवण किया जाता है तो फिर धाम का लाभ होता है। तो भगवान का दर्शन कीजिए और दर्शन करके थोड़ा धाम के बारे में सुनिए, भागवत थोड़ा सुनिए, और फिर उसके बाद आप सब के लिए सुंदर संडे फिस्ट का प्रसाद हम सबके लिए व्यवस्था किया गया है, सब लोग प्रसाद ले सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे, ये बहुत ही एक जो मास चल रहा है उसको भाद्र मास बोला जाता है, और कल का जो तिथि था उसको भाद्र पूर्णिमा था। तो इस तिथि में अगर आप सारा भारत में घूमेंगे तो आपको भागवत कथा सुनने को मिलता है। ये भाद्र पूर्णिमा के तिथि में हर लोग अपने घर में भागवत कथा करते रहते हैं। तो ऐसा क्या चीज है कि इस दिन में इतना भागवत कथा किया जाता है, इसका क्या कारण है, थोड़ा आज हम चर्चा करेंगे। और ऐसा तक भी भागवत पुराण में सुखदेव गोस्वामी 12वां स्कंद में बोलते हैं, 12वां स्कंद के 13वां अध्याय के 13वां श्लोक में बताते हैं, प्रोष्ट पद्यम पौर्णमाश्यम हेम सिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम स याति परमम गति। सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि इस भाद्र पूर्णिमा में अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, श्रीमद् भागवत पुराण को सोने के सिंहासन में अगर कोई रखता है और रख के किसी को दान देता है, प्रोष्ट पद्यम, प्रोष्ट पद्यम मतलब क्या है, भाद्र मास, प्रोष्ट पद्यम, प्रोष्ट पद्यम पूर्णमासम, पूर्णमासम मतलब क्या है, पूर्णिमा, इस भाद्र मास का पूर्णिमा के तिथि में अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, हेम सिंह मतलब आपको सोने का सिंहासन चाहिए, अगर वो भी नहीं है लकड़ी का सिंहासन में भी रख सकते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं सोने का सिंहासन में, मतलब उसके ऊपर जो व्यक्ति बैठेगा उसका कीमत सोने से तो ज्यादा रहेगा, सोने का सिंहासन में अगर कुछ रखते हैं तो उसका कीमत उससे ज्यादा रहता है। तो इसीलिए उस उपमा दिए थे कि सोने का सिंहासन बनाइए, और बोलेगा अरे इसके ऊपर किसको बिठाएंगे, सोने का सिंहासन के ऊपर, हेम सिंह समन्वितम, सोने का सिंहासन बनाइए और उसके ऊपर ददाति यह भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण को सोने का सिंहासन के ऊपर विराजमान कीजिए, और किसी को दान में अगर व्यक्ति देता है तो उसका प्रतिपद में उसको क्या मिलता है, स याति परमम गतिम, कृष्ण बोल रहे हैं, सुखदेव गोसाई बोलते स याति परम गति को प्राप्त करता है। कौन सा परम गति, भगवान के धाम, जहां पर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी जठरे सयमना नहीं होना पड़ता है, भगवान के धाम को वो प्रवेश कर जाता है। सोचिए क्या वरदान मिल रहा है। इस स्थिति में कोई भी अगर भागवत किसी को दान में देता है, इसलिए हमारे हरे कृष्ण मंदिर किधर भी जाएंगे आज के चालू हो जाता है भागवत पुराण डोनेशन। हम बोलते हैं कि आप लोग डोनेशन भी देते हैं, मेरे नाम से 2 भागवत पुराण बांटिए, मेरे नाम से 10 भागवत बांटिए, तो बहुत सारे डोनेशन आता है भागवत बांटने के लिए स्थिति में। तो ये सुखदेव गोस्वामी 12वें स्कंद में बता रहे हैं कि ये फायदा होता है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है आज थोड़ा हम चर्चा करेंगे। ऐसा क्या चीज है भाद्र पूर्णिमा में कि भागवत पुराण किसी को अगर कोई दान में देता है तो उसको इतना लाभ हो जाता है, ऐसा क्या है भाद्र पूर्णिमा में? तो ऐसे तो देखा जाएगा तो बाहरी दृष्टि से ऐसा भी बोलते हैं कि भाद्र पूर्णिमा में सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है। सन का जो कॉन्स्टिलेशन रहता है ना, सिंह का जो नक्षत्र रहता है उसमें सूर्यदेव प्रवेश करते हैं। ये साल में एक ही बार होता है और ये भाद्र पूर्णिमा में ही होता है। तो सुखदेव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अच्छा एक उपमा देते हैं कि जब सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, सिंह कौन है? जंगल का राजा है, है? सिंह जब गर्जन करता है तो सब भाग जाते हैं, सब दूर दूर से। तो सिंह जो है राजा है, और सूर्य जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, दूर से अगर देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्यदेव राजा के भांति है, क्योंकि सिंह के ऊपर बैठे हैं, सिंह राशि के ऊपर बैठे हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्यदेव पूरा एक राज सिंहासन, सोने का राज सिंहासन में बैठे हैं। तो इसीलिए एक ऐसा भी बोला जाता है भागवत को सोने का सिंहासन में देके दान किया जाना चाहिए। तो ये सब तो बाहरी कारण है, लेकिन हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, उसका मूल लीला क्या है। तो उसके लिए हमको थोड़ा 5000 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो 5000 साल पीछे जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती में लीला कर रहे थे और भगवान ने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध रचाया ताकि धर्म का जय हो, पांडव का जय हो, और भगवान सूत्रधार करते हुए पांडव को विजय प्राप्त करवा दिया, और राजा कौन बने? युधिष्ठिर महाराज। सो युधिष्ठिर महाराज पूरा सारा भारतवर्ष का सम्राट बन गए युधिष्ठिर महाराज। फिर कृष्ण देखे कि परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृत धर्म संस्थापना सब हो गया, अभी मेरा लीला समाप्त हो गया। अभी कृष्ण सोचे कि अभी हम अपने घर जाएंगे, तो फिर भगवान फिर गोलक वृंदावन चले गए। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर महाराज को एक खबर मिलता है कि कृष्ण हमको छोड़ के चले गए, हमको बोले भी नहीं हमें जा रहा हूं, नहीं तो हम चले जाते उनके साथ, तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत दुख लगता है कि हम पांडव जिनको कि हर पर हर समय भगवान कृष्ण ने हमको बचाया है, हमको बिना बोले चले गए, छोड़ के चले गए। तो युधिष्ठिर महाराज का आनंद नहीं लगता है, फिर बोलते कि मैं भी छोड़ के चला जाऊं। तो युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, अपना राज सिंहासन को परित्याग करते हैं और किसको राजा बनाते हैं? एकलौता वारिस पांडव का कौन था? परीक्षित महाराज। क्योंकि बाकी सबको अश्वत्थामा ने मार दिया था, द्रौपदी के 5 पुत्र को ब्रह्मास्त्र से उनको गर्दन काट के मार दिया था, और हालांकि अर्जुन का बेटा अभिमन्यु उसका भी वध हो गया था, लेकिन अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित माता उत्तरा के गर्भ में था, और उसको भी मारने के लिए अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, और ये ब्रह्मास्त्र जाके परीक्षित को मार भी चुका था, उसका शरीर को जला भी दिया था। लेकिन जैसे ही उत्तरा पाही माम बोल के कृष्ण के तरफ दौड़ती है, तुरंत भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश करके परीक्षित को बचाते हैं। देखो ऐसा टेक्नोलॉजी की तरह है क्या है, गर्भ के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं और जब बच्चा मर गया था उसको बचाते हैं और उसको रक्षा करते हैं कृष्ण। तो ऐसा जो परीक्षित महाराज थे, तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि इन परीक्षित महाराज को राजा किया जाए और हम यहाँ पर वानप्रस्थ लेके सब कुछ छोड़ के जाने वाले, और परीक्षित महाराज को राजा कर देते हैं और युधिष्ठिर महाराज उत्तर के तरफ गमन करते हैं। उत्तर के तरफ मतलब हिमालय के तरफ आगे बढ़ जाते हैं। भीमसेन देखते हैं बड़े भाई चले गए, मैं अभी अकेला इधर क्या करूंगा, मैं बोले कि मैं भी जाता हूँ भाई को पीछे पीछे, भाई के पीछे पीछे मैं भी चलता हूँ। तो युधिष्ठिर अपना भीम भी अपना गदा फेंका और वो भी अपना वानप्रस्थ वस्त्र लेके युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे आगे बढ़ गए। भीम गए तो कौन देखे उनके पीछे? अर्जुन। बोले बड़े भाई जा रहे हैं, मैं अकेला क्या करूंगा हस्तिनापुर में। वो अपना गांडीव नीचे रखे, चलो वो भी वानप्रस्थ के वस्त्र परिधान करके भीम भाई के पीछे पीछे चले गए। अर्जुन गए, पीछे कौन बचे? नकुल सहदेव। बोला हम दोनों क्या करेंगे, आगे तीनों भाई चले गए तो वो लोग भी निकल गए। पांचों लोग चले गए आगे, कौन बचे हमारे? और पांचों के पत्नी द्रौपदी। बोली कि अरे पांच पति मेरे जाने वाले जा गए, निकल गए, अभी मैं अकेली किसका सेवा करूं? तो भी वो भी द्रौपदी बोली कि मैं भी हस्तिनापुर परित्याग करूंगी, और द्रौपदी भी उनके पीछे पीछे निकल गई। तो इस प्रकार पांच पांडव उत्तर के तरफ, हिमालय के तरफ आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। और जाते जाते आपको महाभारत में वर्णन आता है, सबसे पहले गिरती है कौन? द्रौपदी गिर जाती, फिर नकुल सहदेव, फिर अर्जुन, भीम, ऐसा होते होते सब लोग भगवान के धाम चले जाते। तो कृष्ण गए, पांडव गए, अभी बचे एक ही कौरव के जो अंतिम, वो कौन है? परीक्षित महाराज। और सारा विश्व का सम्राट थे परीक्षित महाराज। और बोला जाता है परीक्षित महाराज ऐसा शासन कर रहे थे, हालांकि द्वापर युग का अंत होने को आ गया था और कलियुग प्रारंभ होने का समय भी आ गया था, लेकिन कली का प्रवेश ही नहीं हो पा रहा है। कली का समय आ चुका था लेकिन कली को प्रवेश करने के लिए भी कुछ तो मौका चाहिए ना, कुदर तो रहने के लिए जगह चाहिए ना, उसको जगह ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि परीक्षित महाराज इतना धार्मिक राजा थे, इतने बड़े वैष्णव थे कि कहां भी उनके सम्राट में कली के लिए स्थान नहीं था। क्योंकि कली चार जगह पर निवास करता है, कौन सा चार जगह? जहां मांसाहार होता है, जीवों का जहां पर भक्षण होता है वहां कली रहता है। घर में अगर शांति सुख शांति चाहिए तो मांसाहार मत कीजिए, देखो आधा आपका घर का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मांसाहार जिधर होता है कली उधर, वो उसका निवास स्थली है। फिर कली मतलब क्या है? झगड़ा। फिर घर में झगड़ा होगा, ये होगा, वो होगा। पहला मांसाहार, दूसरा क्या है? नशा नहीं करना चाहिए। नशा मतलब क्या है? दारू, स्मोकिंग, सिगरेट, तंबाकू, और क्या करते हैं? चाय, कॉफी। लोग चाय कॉफी भारत में सुनते तो विचलित तो हो जाता है, अरे प्रभु जी चाय कॉफी कौन सा नशा है, ये तो हम दूध में पी के कितना अच्छा लगता है, चाय कॉफी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर अक्सर जो लोग आते हैं चाय कॉफी का टाइम हो जाता है, हमको पूछते हैं प्रभु जी चाय कहाँ मिलता है, तो हम बोलते हैं कि वहां पर हर्बल टी मिलता है। तो पीते हैं प्रभु जी, लेकिन मजा नहीं आ रहा है आपका हर्बल टी में जैसा चाय में मजा आता है। उसका मतलब क्या है? कुछ तो उधर मिलता है चाय का एक नशा जो कि आपको हर्बल टी में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो नशा है, जान लीजिए। एक वस्तु के बिना अगर आप रह नहीं पाते हैं उसका मतलब क्या है? नशा धीरे धीरे चढ़ रहा है, और नशा का डोज नहीं मिल रहा है इसलिए आप विचलित हो जाते हैं, चाय 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 चाय। तो इसलिए चाय कॉफी भी हम नहीं पीते, उसमें कैफीन रहता है, कैफीन वो नशा है, छोटे परिमाण में रहता है कैफीन, और धीरे धीरे नशा करता है। फिर कहां पर? जहां पर जुआ खेलते हैं, जुआ जहां पर खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, पैसा लगाते हैं ना। तो लोग बोलते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? आप पैसा लगाएंगे दिन भर आपका मन उधर ही अटका रहेगा, आप ऑफिस जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, मन आपका उधर ही रहेगा, जीता कि हारा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो फिर भगवान का भक्ति कैसे होगा फिर? इसलिए जुआ जहां पर खेला जाता है वहां पर कली निवास करता है। देखो उधर ही बहुत झगड़ा होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। और चौथा क्या है? अवैध स्त्री संग करना, जो प्रामाणिक विवाह के पूर्व जो चलता है पाश्चात्य देश में, जैसे होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इलिसिट अफेयर होता है, उसमें भी अगर करते हैं तो उसमें भी कली निवास करता है। अगर हमारा अफेयर रहेगा, कुछ ऐसा करेंगे तो हम कली में, सुन रहा था एक कथा कि हम अगर किसी के साथ कुछ धोखा करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा शादी हो जाए और हमको एक सती नारी मिल जाए, कभी मिलेगा ऐसा? आपने अगर किसी के साथ चरित्र खराब किया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे कि शादी जब मेरा होगा एक सती नारी मिल जाए, आपको लगेगा ऐसा? लेकिन बाद में पता चलेगा अरे बाप रे इसका तो दो अफेयर पहले से, क्योंकि आपने वैसा किया है तो इंटरेस्ट के साथ वो आता है, तो ये उल्टा भी एप्लीकेबल है। तो इसीलिए इसको भी हमको नहीं करना चाहिए। तो ये चार जगह पर कली निवास करता है। परीक्षित महाराज के राज्य में कली ढूंढ रहे चार जगह, कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो टाइम हो रहा है लेकिन उसको जगह नहीं मिल रहा रहने के लिए। परीक्षित महाराज को रिक्वेस्ट करने की है, महाराज मेरा समय हो गया आने का, द्वापर युग का अंत होने को आ गया, कलयुग प्रारंभ होने का समय होगा, लेकिन मुझे जगह ही नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके राज्य में चार चीज किधर भी नहीं हो रहा है। आप इतना अच्छा धार्मिक राजा हो कि किधर भी की चार चीज करने को दे ही नहीं रहे आप, किधर मैं रहूं फिर, मैं भी आपका प्रजा हूं, मेरे ऊपर कुछ दया कीजिए। अब क्षत्रिय जो रहते हैं कोई भी समर्पण करता है तो उसको तो रक्षा करते हैं। तो परीक्षित महाराज थोड़ा सोचने लगे, हाँ ठीक है आपके लिए पांचवा जगह मैं देता हूं। कहां पर? जहां पर इलीगल रूप से सोने का इकट्ठा किया जाता है, ब्लैक मनी, आज की तारीख में ब्लैक मनी जहां रहता है, ठीक है, ब्लैक मनी से व्हाइट मनी जो करते हैं ना, ब्लैक मनी जहां रहता है, ऊपर का जो आता है पैसा, नीचे का पैसा, उसमें कली निवास करता है। अब करोड़ों का पैसा कमाएंगे इधर उधर करके उसका कुछ फायदा नहीं है, जितना पैसा कमाएंगे उसका डबल आपका नुकसान होगा। मैंने बहुत ऐसा देखा है, इधर उधर के ब्लैक मनी कमाते हैं लेकिन घर में किसका हेल्थ खराब हो जाता है, किसका बच्चा का बीमारी हो जाता है, और जितना पैसा चोरी इधर उधर से ब्लैक से कमाया था सब चला जाता है, क्या फायदा। उससे अच्छा आप जितना अच्छा कर्म करो, धार्मिक रूप से कार्य करके जितना सही रूप से आपको मिलना चाहिए उतना कमाइए, आपका घर सुख शांति में रहेगा, कभी भी तकलीफ प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो कली थोड़ा खुश हो जाता है, बोला ये तो थोड़ा चांस दिख रहा है, काला धंधा मनी तो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा किधर किधर लोग रखे हैं, और कली उधर तुरंत प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार कली का आगमन होता है। और अभी देखिए कली का आगमन हो गया मतलब कलियुग अभी शुरू होने के लिए सब अरेंजमेंट भी होगा ना, तो भगवान भी वैसा सब अरेंजमेंट करते हैं। तो एक दिन परीक्षित महाराज सोचते हैं कि पहले राजा लोग कैसे रहते थे, अपने को हमेशा रेडी करके रखते थे राजा जो भी रहते थे, आज के जैसा नहीं होते। प्रभुपाद बोलते हैं कि आजकल जो बड़ा कमांडर रहता है वो एसी रूम में बैठा रहता है और पूरा आर्मी बटालियन को भेज देता है, वो बेचारे लोग मरते हैं ये अंदर से बैठ के फोन में बात करते रहता है, हाँ इधर चलो उधर चलो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले राजा जो कमांडर रहता था खुद आर्मी को लेके सामने खड़ा रहता था और उसके लिए वो खुद को प्रिपेयर करके रखते थे। तो बीच बीच में अगर लंबा समय तक युद्ध ना हुआ तो वो लोग खुद जंगल में जाते थे शिकार करने के लिए, क्योंकि शिकार जब करते हैं तभी आपको मारने का जो रहता है टच में रहते हैं, नहीं तो फिर अगर 2 साल से 5 साल से गोली नहीं चलाया और तुरंत गोली चलाना तो हाथ कांपेगा, अरे गोली तो चलाया नहीं, इसलिए टच में रहना। इसलिए देखो मिलिट्री में समय से प्रैक्टिस करते रहते हैं, हर रोज सुबह उठते हैं प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हाँ टच में रहेंगे तो कभी भी वार होगा तो एक्शन में आ सकते हैं। तो राजा लोग भी जाते थे शिकार करने के लिए इसलिए, और शिकार करते करते ऐसे वो शेर के साथ आमने सामने लड़ाई भी करते थे। हमारे बहुत सारे ऐसा शूरवीर राजा हैं, शिवाजी महाराज शेर के साथ लड़ाई करते थे, राणा प्रताप सिंह, कितने बड़े बड़े राजा हैं भारत में, वो अपने हाथों, ऐसा नहीं कि शेर को छोड़ दिया और दो दो तलवार लेके उसको मार दिया, ऐसा नहीं, अपने हाथों से शेर को फाड़ देते थे, इतना सोचो उनके अंदर साहस रहता था। तो परीक्षित महाराज गए थे शिकार करने के लिए जंगल में, और शिकार करते करते घने जंगल के अंदर प्रवेश कर गए, पूरा दिन निकल गया और उनको प्यास लगने लगा, पानी तो पास में ले नहीं थी, लड़ाई करेंगे ये करेंगे तो सब लेके नहीं जाएंगे, तो बहुत प्यास लगने लगा। और उधर तो कुछ राजा अभी जंगल में कौन पहचानते हैं उनको, तो इधर उधर भटक रहे हैं, तालाब ढूंढ रहे हैं, कुआं ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। ढूंढते 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 कहां पर आए, सैमिक ऋषि के आश्रम के पास आए। तो ऋषिवर यहां पर ध्यान में बैठे हैं, पूरा मग्न में बैठे, आंख बंद करके बैठे हैं ध्यान में भगवान के ऊपर, और दरवाजे में नॉक कर रहे हैं, हरे कृष्णा कोई है, कुछ आवाज कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, हमें बहुत प्यास लग रहा है थोड़ा जल दे देंगे क्या। राजा बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, कुछ अंदर से कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अभी सोचो भारत के पंत प्रधानमंत्री आएंगे आपके घर में, मोदी जी आएंगे, नॉक करेंगे, थोड़ा पानी मिलेगा क्या एक गिलास, अरे बोले अरे बैठो बैठो पानी का सब लेके आते हैं देता आपको, अरे बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं ये, हमारे सारे भारत के नहीं थे, सारे विश्व के प्रधानमंत्री थे, पृथ्वी के सम्राट थे राजा परीक्षित, और उनके घर में बोल रहे कि प्यास लग रहा है थोड़ा पानी दे दीजिए, कोई उनको स्वागत ही नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा अपमान है, बहुत बड़ा एक्चुअली देखा जाएगा तो बड़ा दंड भी मिलना चाहिए। तो इनको भी गुस्सा, अभी देखिए भूख जब लगता है ना, भूख प्यास, लगता है और खाने का टाइम हो गया, बॉस कुछ और आपको प्रोजेक्ट देता है ये करके आ जाओ तभी देखो, या दोस्त बोलता अरे ये करो, या कोई कुछ आपको बोलते कि ये एक घंटा लगेगा ये करो फिर जाओ, और आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लग रहा है, टाइम हो गया आपका खाने का, क्या लगता है उस समय पर? चिड़चिड़ लगता है, माता जी बोले चिड़चिड़ जाते हैं व्यक्ति, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आता है कि नहीं अभी उसको देना था क्या? क्योंकि व्यक्ति को जब भूख लगता है ना फिर बुद्धि काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इधर अग्नि जलना चालू हो जाता है, इधर और एक अग्नि है जठार अग्नि। तो परीक्षित महाराज की भी कुछ दशा ऐसा ही था, बहुत भूख लग रहा था, प्यास लग रहा था, सुबह से कुछ खाए नहीं थे और थक गए थे जंगल में पूरा कसरत करके शिकार करके, और पानी बस मांग रहे, मांग क्या रहे, पानी दो बूंद दे दो पीने के लिए। जिनके पास राजमहल में इतने सारे नौकर चाकर रहते हैं सेवा करने के लिए, भिखारी की तरह मांग रहे हैं कि पानी थोड़ा दे दो, लेकिन इधर कोई नहीं दे रहा है। गुस्सा आता है राजा को, गुस्सा तो आएगा, राजा है। थोड़ा अंदर जाते हैं, चल क्या रहा है अंदर देखने के लिए, और अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं क्या देख रहे हैं, सैनिक मुनि ऐसा बैठ के ध्यान में बैठे हैं। बोले अरे इतना ध्यान कर रहा है, इतना मांग रहा हूं पानी, इसको सुनाई नहीं देता है क्या? और गुस्सा आता है तो फिर गीता में भगवान क्या बोलते हैं, बुद्धि नष्टो, गुस्सा आ जाता है बुद्धि काम करना स्विच ऑफ हो जाता है। देखो जितना सारा बड़ा बड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी होता है, अगर आप देखेंगे कभी कभी ऐसा एक आया था खबर कि बाप ने बेटा को मार दिया, बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा था, उसको ऐसा चांटा कान के नीचे दिया, उधर ही उसका स्पॉट डेथ हो गया, न्यूज में आया था। फिर उसको जेल जब हो गया तो खाली रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, क्योंकि इतना पश्चाताप कर रहा है कि मैं मेरा बेटा को मार दिया। लेकिन क्यों मारा, उस समय बुद्धि काम नहीं करता है। गुस्सा जब आ जाता है ना, व्यक्ति का बुद्धि स्विच ऑफ हो जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि बोलते हैं ना, बुद्धि काम ही नहीं करता है, क्या सही क्या गलत पता नहीं चलता है, और अपना ही बेटा को मार दिया, बाद में रोने से क्या मिलेगा, बेटा तो चला गया। तो इसलिए बोलते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए बोलते हैं गुस्सा को पीना सीखिए, गुस्सा आता है उसको पी लीजिए, बाहर मत निकालिए, बाहर निकालेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो गुस्सा जब बाहर आता है तभी परिवार में झगड़ा होता है ना, सास बहू में, स्वामी स्त्री में, भाई भाई में, जितना भी झगड़ा देखिए, गुस्सा आता है, गुस्सा के बाद झगड़ा चालू होता है। इसलिए गुस्सा को जो पीना सीख लिया, परिवारों का सुख शांति में चलता है, और थोड़े समय के लिए गुस्सा रहता है, ज्यादा समय के लिए नहीं रहता है। आप बहुत सारे आजकल के आधुनिक युग में बहुत सारे टिप्स देते हैं, गुस्सा आया थोड़ा प्राणायाम कीजिए, थोड़ा लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस खींचिए और छोड़िए, आधा गुस्सा कम हो जाएगा, बहुत सारे टिप्स देते हैं। लेकिन असली टिप्स क्या है, अगर भगवान के साथ संपर्क में रहेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपका आधा गुस्सा क्या, पूरा गुस्सा शांत हो जाएगा, और भगवान का सेवा में आप निरंतर लगे रहेंगे। तो इस बार अभी ये थोड़ा अलग है, ये महाराज का जो भी लीला चल रहा है भगवान का इच्छा के अनुसार चल रहा है, इसलिए हमको जज नहीं करना चाहिए परीक्षित महाराज को क्यों आ रहा है, क्योंकि भगवान का इच्छा है कि अभी ऐसा लीला मुझे चाहिए ताकि आगे की पीढ़ी के लिए बताएंगे अभी क्या मिलने वाला है। तो परीक्षित महाराज गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा में विवेक काम करना बंद कर देता है, और वहां पर जाके देखते हैं अभी तो मार नहीं सकते, ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, हाथ तो नहीं उठा सकते, करेंगे तो क्या करेंगे। तो देखते हैं कि सामने क्या एक पड़ा था, मरा हुआ एक सांप पड़ा था, तो तीर से सांप को उठाते हैं और परीक्षित महाराज क्या करते हैं, उनके गले में ऐसा डाल देते हैं, उनको माला पहना देते, मरा हुआ सांप का एक माला उनके गले में डाल के चले जाते हैं और खबर चारों तरफ फैल जाता है कि सैमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया परीक्षित महाराज ने, चारों तरफ खबर फैलता है। किसके कान में गिरता है, सैमिक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी, उसको बोलता है, पता है तुम्हारा पिताजी का इतना बड़ा अपमान हुआ है, वो राजा आया था और तुम्हारा पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल के चला गया। तो ये बोलते कि क्या, मरा हुआ सांप मेरे पिताजी के गले में डाला, उसका इतना हिम्मत, जो क्षत्रिय लोग है हमारे दरवाजे में हमारा कृपा के अनुजाई होकर हमारा सेवा करते हैं, वो मेरे बाप के सर में मरा हुआ सांप डाला। वो भी और एक देखिए, और एक उदाहरण क्रोध का, उधर तो परीक्षित महाराज को क्रोध आया था, अभी इधर किसको आ रहा है, श्रृंगी, उधर क्षत्रियो को क्रोध आया था तो मरा हुआ सांप डाला, अभी ब्राह्मण को क्रोध आ रहा है तो क्या करेंगे। अभी देखिए, अभी उनका सत्य क्या है, ब्राह्मण का सत्य क्या है, उसका ब्रह्म तेज, तुरंत क्या किया, जल हाथ में लिया और एक ब्रह्म शाप उच्चारण कर दिया। जो राजा मेरे पिताश्री के गले में मरा हुआ सांप डाला है, उस राजा का आज से 7 दिन 7 रात पश्चात तक्षक नामक सांप से दंशन से उसका मृत्यु हो जाएगा। दंड क्या क्या कार्य हुआ था और दंड क्या मिल रहा है, देखिए, चोरी किया छोटा सा और मिल रहा है फांसी का दंड, ऐसा कुछ हो गया ना। मरा हुआ सांप ही तो डाला था, उसको मारा भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन इसको दंड क्या दिया, उसको मृत्यु दंड दे दिया, क्योंकि उनका भी विवेक काम करना बंद कर दिया, गुस्सा आया। ठीक है, और एक उदाहरण, गुस्सा आया तो बुद्धि काम करना बंद कर देता है, फिर गुस्सा उतर गया फिर रोना चालू करता है, क्योंकि श्रृंगी छोटा बालक था, ज्यादा बड़ा नहीं था, 6-7 साल का बालक था, छोटा ही बालक था, लेकिन कितना ताकत था, ब्रह्म ऋषि था, सब ब्राह्म पढ़ा था, तो रोना चालू करता क्योंकि उसको लगता है कि कुछ ना कुछ गलत मेरे हाथ से हुआ है जो कि नहीं करना चाहिए मुझे। और रोते रोते अपने पिताश्री के पास जाते हैं, और जैसे ही रोना चालू करते हैं तो पिताश्री आंख खोलते हैं, क्यों रो रहा है बेटा, क्या हुआ? उनको अभी तक पता नहीं चला कि सांप पड़ा है मेरे गले में, उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा क्या पड़ा है, क्योंकि वो तो एक राज ऋषि हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा। बोले क्यों रो रहा है, और देखते हैं सांप पड़ा, निकल के साइड में फेंक रख देते हैं, क्या हुआ, उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ा सांप कौन डाला है, कौन क्या है उनको, क्योंकि वो ऋषि भर है, वो शरीर के परे हैं। तो ये महाशय बोलते हैं कि पिताजी, आपके गले में जिस व्यक्ति ने मरा हुआ सांप डाला था, उसको मैंने श्राप दे दिया कि 7 दिन 7 रात में उनका मृत्यु हो जाएगा। बोले कि क्या क्या तूने? अरे जिस राजा का कृपा के कारण हम लोग बैठ के यहां पर ध्यान कर पा रहे हैं, तुम उसी राजा को मारने के लिए श्राप दे दिया। हमारा जो ब्राह्मण कुल इस संसार में है, उनका ही तो कृपा के कारण है। अगर परीक्षित महाराज चारों तरफ नहीं घूमते तो कली कब से प्रवेश कर चुका था और हम लोग कब से चले जाते, उनका कृपा है इसलिए हमारा आश्रम चल रहा है और हम लोग भगवान का शांति में बैठ के ध्यान कर पा रहे हैं, उनका ही सब कृपा के कारण, और तुम उसको ही मारने के लिए श्राप दिया है, अपने ही पैर में कुरान मारा तुमने, कितना बड़ा पाप किया तूने। तो सैमिक मुनि सोचे कि मैं खुद जाऊं परीक्षित महाराज को बोलने के लिए, लेकिन वो गए नहीं, क्योंकि उनको पता था कि मैं खुद जाऊंगा तो परीक्षित महाराज इतने बड़े वैष्णव थे, उनको बहुत खराब लगेगा मुझे देख, क्योंकि उनको लगेगा मैं बड़ा पाप किया हूं। तो सैमिक ऋषि खबर भेज देते हैं, और तब तक जब तक परीक्षित महाराज भी राजमहल आ रहे थे, उनको भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, भगवान के इतने बड़े भक्त हैं तो संकेत मिल जाता है, और उनको खबर मिलता है कि 7 दिन 7 रात में आपका मृत्यु होने वाला है, तक्षक नामक सर्प आएगा और आपको दंशन करके मार देगा। परीक्षित बोलते हैं विष्णु इच्छा, भगवान का जो भी इच्छा है, चाहते तो जो श्राप उन्हें मिला था उसको नष्ट कर सकते थे वो, क्योंकि वो भी राजर्षि थे परीक्षित महाराज, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भी राजर्षि थे, वो भी श्राप देके उस श्राप को काउंटर कर्स करके न्यूट्रलाइज कर सकते थे, उनके पास वो शक्ति था, लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनको संकेत मिल गया था कि भगवान कृष्ण मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं। अरे जो मैं मर गया था, मुझे जो कृष्ण माँ के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके मरा हुआ बच्चा को जिंदा करके मुझे जीवन दान दिया, तो क्या वो चाहते तो मुझे नहीं बचा सकते, अभी बचा सकते हैं ना, मर गया था उसको जिंदा, अभी तो मैं जिंदा हूं, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है इसका कारण भगवान कृष्ण का और कुछ एक प्लान चल रहा है। तो जो भक्त रहते हैं हमेशा भगवान के, उनके जो भी चलता है प्लान के हिसाब से अपने जीवन को धारण कर लेते हैं, इसलिए तो नाम उनका परीक्षित हुआ था, क्योंकि जन्म जब लिए तो सबका धोती खींचते थे और नीचे देखते थे कौन खींच रहा है, तो ऊपर देखते थे नहीं नहीं ये नहीं, दूसरा का धोती खींचते थे, फिर वो नीचे देखते थे, ये ऊपर देखते नहीं नहीं ये नहीं है, सबका परीक्षा करते थे कि वो कहीं वो तो वो व्यक्ति नहीं जिसको माँ का गर्भ के अंदर मैंने देखा था, क्योंकि सबसे पहले जिसको दर्शन किए थे विष्णु को दर्शन किए थे माँ के गर्भ में, इसलिए सबका परीक्षा कर रहे थे कि वो विष्णु किधर है किधर है किधर है किधर है, इसलिए उनका नाम हो गया परीक्षित, सबका परीक्षा करते थे, बचपन से इतने बड़े भक्त थे तो समझ गए कि विष्णु का कुछ इच्छा है, मेरे हाथ से कुछ करवाना चाहते हैं, चलो उनका समर्पित हो जाता हूं। तो बोले उनके बेटे का नाम क्या था, जन्मेजय। तो जन्मेजय को राजगादी में बिठाए, राजा बनाए और वानप्रस्थ लेके सब कुछ लेके जंगल में प्रवेश कर, सब कुछ, रानी, पैसा, करोड़ों का बैंक बैलेंस, पूरा पृथ्वी का सम्राट थे, सोचिए, सब कुछ एक सेकंड में छोड़ देते हैं और मात्र एक कौपिन धारण करके जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। मेरे पास कितना समय है? 7 दिन 7 रात, मुझे क्या करना चाहिए? उनका पहला प्रश्न वही चालू हो जाता है। और गंगा के किनारे आ जाते हैं और वहां पर बहुत सारे ब्राह्मण मुनिवर रहते हैं, उनको प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कोई बोलता है कि आप ना गरम गरम घी बनाओ और उसको पी जाओ, मर जाओगे, स्वर्ग में जन्म लोगे। कोई बोलता है आप भवन करो, यज्ञ करो। कोई बोलता है इतना पैसा आपने कमाया, सब छोड़ के आ गया, पैसा को दान दो ब्राह्मणों को, पुण्य मिलेगा। लेकिन उनका मन किधर भी आकर्षित नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो वैष्णव है ना, भगवान कृष्ण का भक्त है, तो किधर भी ये सब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, हृदय में तृप्ति नहीं आ रहा है। मिलते जा रहे हैं साधु संतों को, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और फिर वहां पर किनके साथ मिलते हैं? व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी वहां पर आते हैं, और सुखदेव गोस्वामी को भी ये प्रश्न पूछते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, कृपा करके हमें बताइए, हमारे पास 7 दिन 7 रात है, क्या करें हम? हमको दया आता होगा ना, बेचारा 7 दिन है, हमको पता नहीं हमारा 7 दिन है ना कितना दिन है, देखा जाएगा। तो एक दृष्टि से उनको तो कंफर्म मालूम था कि उनके पास 7 दिन है, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर कर पाए, उनको 7 दिन में जाने वाले हैं। हमको तो पता नहीं रात में सोएंगे तो सुबह उठेंगे कि नहीं, कुछ गारंटी दे सकते हैं? मैं आज रात में सोया हूं, सुबह पूरा उठेंगे, कुछ गारंटी है? बहुत सारे लोग रात में सोते हैं और रात में ही चले जाते हैं हार्ट अटैक होके। हाल ही में हम कल एक न्यूज में पढ़ रहे थे, एक व्यक्ति था, डॉक्टर MD थे और रनिंग कर रहे थे, पूरा फिट थे, 32 ईयर ओल्ड के थे, हार्ट अटैक हुआ, चले गए, MD डॉक्टर थे। तो हम देखा जाएगा तो परीक्षित महाराज के तुलना में हमारा जो परिस्थिति और संकटमय है, क्योंकि हमको पता नहीं हमारा 7 दिन कब आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, एक महीने के बाद आएगा, एक हमको पता नहीं है, जिसके कारण हम कभी भी अपने को तैयार नहीं कर पाते हैं, प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं उसके लिए। लेकिन परीक्षित महाराज को ये एक आशीर्वाद मिला कि आप 7 दिन 7 रात में प्रस्थान करेंगे, क्लियर था, जिसके कारण मन को उन्होंने मना लिया था कि 7 दिन मेरे पास समय है, मुझे 7 दिन में क्या करना है। सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, आपको क्या करना चाहिए? भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम, मैं कीर्तन करता हूं, आप बैठिए श्रवण कीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी कौन थे? कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, खुद भगवान विष्णु के अंश थे, और राधा रानी का जो तोता सुका वही सुखदेव गोस्वामी है। उनके मुख से पिबत भागवतम रसमालय अमृत के भांति निकलता है। देखो अगर कोई कौन सा फल मीठा है कैसे आपको पता चलता है? जिसमें तोता अपना मुंह मारता है ना, कन्फर्म है कि वो फल हमेशा मीठा रहेगा। तो उसी तरह जो भागवत पुराण है जिसको व्यास मुनि ने लिखा है, उसमें कौन मुंह मारे? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी से मुंह से निकलता है ना, व्यासदेव ने लिख दिया था श्रीमद भागवत पुराण, लेकिन पहला प्रवक्ता कौन है? सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी जिस प्रकार तोता एक फल में अगर मुंह लगाता है तो मीठा रहता है फल, उसी तरह सुखदेव गोस्वामी से मुख से जब वो भागवतम निकलता है और उसका मीठापन और बढ़ जाता है, लोग उसको और आस्वादन कर पाते हैं, और परीक्षित महाराज सब वहां पर आस्वादन कर रहे हैं। यहां तक कि सुखदेव गोस्वामी के खुद के पिता जो लिखे हैं व्यास मुनि, वो भी बैठे थे, वो भी सुन रहे हैं, वो भी आस्वादन कर रहे हैं। अभी बोलेगा अरे ये क्या, ये तो खुद उनके गुरु हैं, खुद उनको सिखाया और खुद बैठे हैं सुन रहे हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकल रहा है, राधा रानी के तोते के मुख से निकल रहा है, उसका मजा ही कुछ और है। यहां तक कि व्यास देव के भी गुरु कौन थे? व्यास देव के गुरु नारद मुनि, वो भी बैठे हैं। देखो गुरु के गुरु भी बैठे हैं सामने सुन रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, और वहां पर सुतो गोस्वामी भी बैठे हैं सुन रहे हैं। इस प्रकार चारों तरफ भागवत कथा चल रहा है। असली में तो बोल रहे थे परीक्षित महाराज को, लेकिन उसका लाभ बाकी लोग ले रहे हैं, और भागवत कथा चल रहा है। पहला दिन दूसरा दिन, तीसरा दिन, और ऐसा नहीं कि दिन में चलता था और रात में चलो अभी थोड़ा आराम करते हैं, सो जाते हैं, सुबह फिर चालू करेंगे। नॉन स्टॉप 24 घंटा चल रहा था भागवत कथा, 24 घंटा। तो तीसरा दिन जब हो जाता है, सुखदेव गोस्वामी थोड़ा परीक्षा करते हैं अभी, थोड़ा परीक्षित महाराज का, कि राजा का अवस्था क्या है, राजा का चेतना कैसा है। बोले कि महाराज, 3 दिन तक आप खाए नहीं, पिए नहीं, कुछ नहीं, सोए नहीं, निरंतर भागवत कथा सुन रहे हैं, थोड़ा विराम ले लेते हैं कथा में, थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ा खा लीजिए, पी लीजिए, फिर चालू करेंगे। हैं, क्या बोलते हैं परीक्षित महाराज, हमें भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रहा है, एक बार प्यास लगा था तो डाला मरा हुआ सब तो मिल गया सब, अभी कुछ नहीं लग रहा है मुझे, अभी मुझे भूख प्यास लग ही नहीं रहा है, उस समय पर प्यास लग रहा था लेकिन अभी लग भी नहीं रहा है, 3 दिन से खाए नहीं, 3 दिन से पिए नहीं, 3 दिन से सोए नहीं, लेकिन बोल रहे हैं क्या, हमें भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपका मुख से जो भागवत अमृत का प्रभाव चल रहा है, उससे मेरा तन मन सब कुछ संतुष्ट हो रहा है, ये अमृत पी के और कुछ मुझे पसंद नहीं, कुछ मुझे प्राप्त करने का इच्छा नहीं, आप बस निरंतर भागवत कथा सुनाते रहो, रुको मत। सुखदेव गोस्वामी को आनंद आता है, वक्ता को आनंद आता है, जब प्रवक्ता जब सुन रहा है, जो व्यक्ति का प्रतिक्रिया को देख के उसको बोलने का और इच्छा बढ़ता है, और वही जब देखता है प्रवक्ता तो उसको भी लगता है टाइम हो गया अभी समाप्त करने का कथा। तो सुखदेव गोस्वामी वाले महाराज को मानना पड़ेगा, इनको तो भूख नहीं लग रहा है, प्यास नहीं लग रहा है, सुने जा रहे हैं और बोल रहे आगे बोलो और बोलो। सुखदेव गोस्वामी बोले पास हो गए एग्जाम में, फिर भागवत कथा और आगे बढ़ाते हैं, चौथा दिन बोलते हैं, पांचवा दिन बोलते हैं, छठा दिन बोलते हैं, सातवा दिन बोलते हैं, और सातवा दिन में पूरा श्रीमद् भागवत पुराण का अंत करते हैं। तो भागवत पुराण में भी देखेंगे तो ये जो भागवत पुराण सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि कितना सिस्टमेटिक है भागवत पुराण, इसमें पूरा भागवत जो पुराण है इसको मैं अंत में बोलूंगा तभी अच्छा लगेगा। तो सातवा दिन आ जाता है, सातवा दिन में भागवत कथा अंत करने से पहले सुखदेव गोस्वामी उनको एक चीज बोलते हैं, हे राजा परीक्षित, मैंने आपको पूरा भागवत कथा सुना दिया, 7 दिन में पूरा श्रीमद् भागवत पुराण आपको सुना दिया, और आप मृत्यु से डरो मत, क्योंकि मृत्यु आपका कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सातवां दिन जब हो गया था, सुबह से वहां पर तक्षक आ गया था मारने के लिए, तक्षक जो सांप है वहां पर प्रकट हो चुका था परीक्षित महाराज को मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पा रहा था। तक्षक कोई साधारण सांप नहीं था, ये एक ऐसा सांप रहते हैं जो कि आसमान में उड़ भी सकते हैं, उनका पंख भी रहता है, और वो सांप जो रहता है अपने मुख से अग्नि और विष दोनों मिला के छोड़ता है, मतलब एक पल में आपको राख कर देगा सांप, ऐसा सांप रहता है तक्षक, इस जगत में इधर नहीं मिलता है भूमंडल में। वो वहां से आ चुका था परीक्षित महाराज को मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पा रहा था, क्यों? क्योंकि भागवत कथा का श्रवण चल रहा है, इसलिए बोला जाता है जहां पर भागवत कथा चलता है मृत्यु का वहां पर कुछ काम नहीं कर पाता है मृत्यु, क्योंकि भागवत कथा अमृत है, और साधारण अमृत नहीं है, ये भगवान कृष्ण का अमृत है। तो जहां पर भागवत कथा अमृत चलता है, वो व्यक्ति जो भी सुनते हैं जन्म मृत्यु से परे चले जाते हैं, मृत्यु उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकता है। तो तक्षक कुछ नहीं कर पा रहा था, सुखदेव गोस्वामी देख रहे हैं कि आके खड़ा है, वो भी सुन रहा है, वो वेट कर रहा है, कब आपका खत्म होगा महाराज, मैं अपना कार्य करूंगा, मुझे भी सेवा दिया गया है, सब कुछ भगवान कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, गोविंद इच्छा, सब सेवा कर रहे हैं उनका। तो सुखदेव गोस्वामी भी सोच लेते हैं कि अभी भगवान का और कुछ इच्छा हो यार, अभी यहाँ पर मुझे विराम लेना पड़ेगा। और सुखदेव गोस्वामी समाप्त करने से पहले बोलते हैं परीक्षित महाराज को, हे महाराज, तुम्हें पूरा मैं भागवत कथा सुना दिया हूं, तुम अमर हो चुके हो, शरीर के स्थिति से ऊपर उठ चुके हो, तुम मृत्यु से डरो मत, और जो सुना है उसको मनन करते हुए भगवान के धाम चले जाओ। और सुखदेव गोस्वामी बोल के व्यास आसन से उठ के चले जाते हैं, और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी जाते हैं, परीक्षित महाराज तन मन ध्यान से जो भागवत कथा उन्होंने सुने से उसको ध्यान करते हुए उनका आत्मा उसी पल गोलोक वृंदावन गमन कर जाता है, मात्र शरीर वहां रहता है, शरीर रहता है, और तब तक तक्षक वहां पर आता है और अपना अग्नि से उस शरीर को एक पल में भस्म कर देता है। लकड़ी का शरीर था, मतलब मरा हुआ शरीर था। परीक्षित महाराज ऑलरेडी उनका आत्मा चला गया था, उससे पहले मृत्यु से पहले ही वो चले गए थे। तो ये रहता भागवत कथा का श्रवण का महत्व, इच्छा मृत्यु जैसा मिलता है। तो ये मैं लीला इतना सब कुछ आज आपको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो लीला हुआ था ये भाद्र पूर्णिमा की तिथि पर अंतिम लीला हुआ था। सातवां दिन का जो लीला हुआ था, परीक्षित महाराज को वैकुंठ गमन जो हुआ था, तक्षक जो आके उनको मारने के लिए आया था, ये सातवां दिन जो है वो भाद्र पूर्णिमा का तिथि है। इसीलिए इस दिन को श्रीमद् भागवत का कथा किया जाता है। और क्योंकि ये कथा सुखदेव गोस्वामी ने सात दिन सात रात किया था, इसके लिए भागवत सप्ताह होता है सात दिन का, और पारंपरिक रूप से भाद्र पूर्णिमा की तिथि पर उसका विसर्जन किया जाता है, उसका अंत किया जाता है। तो बोला जाता है इसलिए भाद्र पूर्णिमा के दिन पर जो भी भागवत बोलता है या कोई भागवत श्रवण करता है या कोई भागवत किसी को दान में देता है, वो परमम गति, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, वो मेरा गति प्राप्त करता है, मेरे धाम में आ जाता है। तो इसीलिए आज हमने भागवत कथा का कुछ श्रवण किया है, लीला पूरा भागवत का मैं बिगिनिंग बताया, प्रारंभ कैसे हुआ बताया, पहला स्कंद बताया, और अंत कैसा हुआ बारहवां स्कंद बताया। बीच का जो दो स्कंद से लेके ग्यारह स्कंद का जो है मैं आपको सारांश में 10 मिनट में बताऊंगा, ताकि पूरा भागवत सुनने का एक फल जैसा हमको कुछ मिल जाए, ठीक है। तो भागवत कैसे शुरू हुआ था, पहला स्कंद में बताया किस प्रकार परीक्षित महाराज को श्राप मिला और किस प्रकार परीक्षित महाराज चले गए, वो बारहवां स्कंद है। और दूसरा स्कंद से ग्यारहवां स्कंद जो है भागवत पुराण, उसको हम 10 मिनट में चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी एक सुंदर श्लोक बोलते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में आता है, दूसरा स्कंद में आता है, दूसरा स्कंद का 10वां अध्याय का पहला श्लोक है। अत्र सर्गो विसर्गश्च, बोल सकते हैं सब लोग, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया मन्वंतरा ईशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। तो एक 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 श्लोक, ये अभी दूसरा स्कंद से सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा शुरू कर रहे हैं। पहला तो महाभारत था पहला स्कंद, दूसरा जैसे भगवत गीता पहला स्कंद पहला चैप्टर में दोनों आर्मी सामने सामने आते हैं, अर्जुन बोलते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, कृष्ण बोलते हैं क्यों, फिर शुरू करते हैं दूसरा स्कंद से भगवान बोलना, भगवत गीता चालू होता है। उसी प्रकार पहला स्कंद पे महाभारत, परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है, सुखदेव गोस्वामी को मिलते हैं, और दूसरा स्कंद से सुखदेव गोस्वामी बोलना चालू करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, बोलने से पहले सुखदेव गोस्वामी पूरा श्रीमद् भागवत पुराण का सारांश बता रहे हैं, मैं अभी क्या बोलने वाला हूं। तो 10 चीज मैं बोलने वाला हूं श्रीमद् भागवत पुराण में, 10 चीज है, 10 टॉपिक है। पहला क्या है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मूतया मनवंतरा ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 चीज क्या है थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पहला चीज है सर्ग। सर्ग मतलब जो ब्रह्मांड का सृष्टि कैसे होता है, महाविष्णु आते हैं और महाविष्णु अपना जब सांस छोड़ते हैं तो जैसे ही सांस छोड़ते हैं उनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृष्टि होता है। हर ब्रह्मांड के अंदर उनका एक अंश गर्भोदक विष्णु प्रवेश करते हैं और अंदर जाके वो अपने शरीर का जो पसीना निकलता है उनका, उस पसीना से गर्भोदक सागर बनता है, इसलिए सागर का पानी थोड़ा खारा रहता है, नमकीन, गर्भोदक विष्णु का पसीना है, और उसके ऊपर अनंत शेष में वो सोते हैं, और उनके नाभि कमल से कौन जन्म लेते हैं, कमल एक निकलता है और उस कमल में ब्रह्मा जी जन्म होते हैं, इसको सर्ग बोलते हैं। ये पहला स्कंद और दूसरा स्कंद में आपको सुनने को मिलता है भागवत पुराण में, और इसको भगवान का 2 चरण के साथ भी तुलना किया जाता है। कृष्ण का लोटस फीट है ना, अभी देखेंगे राधा वृंदावन विहारी का दर्शन खुलेगा 12 बजे, लोटस फीट 2 पैर जो है वो पहला एक स्कंद और दूसरा स्कंद है। देखो सुखदेव गोस्वामी कितना सुंदर कमेंट्री देते हैं, इसको भागवत को भगवान का विग्रह के साथ भी तुलना करते हैं, और फिर थोड़ा ऊपर आते हैं, अत्र सर्ग विसर्ग, विसर्ग मतलब भगवान ने सृष्टि कर दिया लेकिन डिटेल जो सृष्टि करने वाले हैं भगवान खुद नहीं करते हैं, छोटा मोटा काम किसी को डेलीगेट कर देते हैं, फिर ब्रह्मा जी बोलते आगे आप करो, मैंने करके दे दिया आगे आप करो, पहला इंजीनियर ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं जितने सारे जाति हैं सबका शरीर बनाओ, तो फिर मनुष्य कुत्ता बिल्ली माकड़ शेर पेड़ सब बनाते हैं, ब्रह्मा जी सब बनाते हैं। तो ये जिसको बोलते हैं इसको विसर्ग बोलते हैं, इसको ये तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद में वर्णन किया गया ब्रह्मा जी का सृष्टि, किस प्रकार 14 मनवंतरा है, किस प्रकार प्रजापति दक्ष करता है, सब ये तीसरा चौथा पूरा स्वयंभू मनु सब चलता है तीसरा और चौथा स्कंद, इसको विसर्ग बोला जाता है। और ये तीसरा और चौथा स्कंद भगवान का क्या है, दोनों जंघा, वृंदावन विहारी से नीचे से ऊपर जाएंगे दोनों पैर हो गया, दोनों जंघा जो है तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद है, ठीक है, थोड़ा ऊपर अभी आएंगे। और उसके ऊपर क्या है, स्थानम, सर्ग विसर्ग स्थानम, जो स्थान है, स्थान मतलब क्या है, आप स्थान लेके बैठते हैं जगह, तो स्थान मतलब क्या है, कैंटो फाइव पांचवा स्कंद, कैंटो फाइव में क्या है, भूमंडल, वो भगवान का क्या है, नाभि, देखो नाभि सेंटर पार्ट रहता है स्थान, तो भगवान का जो नाभि है वो कैंटो फाइव है भूमंडल। देखो पांचवा स्कंद जो भी पढ़ते हैं तो पूरा सब ऊपर से जाता है क्योंकि पांचवा स्कंद में पूरा कॉस्मोलॉजी है, कैसे दिन होता है, कैसे रात होता है, कैसे जम्बूद्वीप बना, कैसे भूमंडल बना, कैसे सूर्य घूमते हैं, पूरा टेक्नोलॉजी है, पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट है, लोग का पूरा बाउंस होता है, किसको समझ में आता नहीं पांचवा स्कंद। और आधा लोग बोलते हैं ये सब ऐसा होता है क्या, बोलते हैं कि पांचवा स्कंद में जिसका श्रद्धा अटूट है वो छठा स्कंद में प्रवेश करता है, नहीं तो उधर यू टर्न हो जाता है, क्या कुछ भी लिखा है भागवतों में बोलते हैं। तो पांचवा स्कंद बहुत बड़ा श्रद्धा को परीक्षा लेता है पांचवा स्कंद। और उधर ही पांचवा स्कंद के अंत में भगवान सुखदेव गोस्वामी पूरा 28 प्रकार का नर्क भी बताते हैं, 14 भूमंडल बताते हैं और बोलते हैं कि सब भूमंडल के नीचे ना मामा का घर है 28 मामा का घर है, तो बोले कि एक एक जो पाप करते हैं उसका क्या प्रतिक्रिया दंड मिलेगा, एक एक नर्क दिया गया 28 नर्क। पहली बार जब हम पढ़े तो हमको एक रात नींद ही नहीं आया, ऐसा अब पढ़ेंगे तो डर जाएंगे, हम इधर पकौड़ा फ्राई करके खाते हैं और उधर आपको पकौड़ा बना के खाएंगे, सोचो कैसा लगेगा, गरम गरम उबले हुए तेल में आदमी को उल्टा करते हैं और डाल देते हैं सीधा पकौड़ा, गरम गरम पकौड़ा। और सबसे ऐसा इंपॉर्टेंट है कि आदमी मरता नहीं है, मर गया तो अच्छा है, मरता नहीं है क्योंकि निर्जातन शरीर दिया जाता है नर्क में, आपको कष्ट मिलेगा लेकिन आप मरेंगे नहीं। अरे बाप रे, कष्ट मिलेगा लेकिन मरेंगे नहीं, मतलब कष्ट को आप देखेंगे, बहुत खतरनाक रहता है। एक नर्क का ऐसा पकौड़ा, दूसरा नर्क का ऐसा, अलग अलग डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। परीक्षित महाराज सुन के पांचवा स्कंद रोना चालू करते हैं कि अरे लोगों को इतना यातना मिलेगा, लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगा, कुछ तो कीजिए आप। बोले अरे बहुत आसान है, अजामिल का लीला बताते हैं छठा स्कंद का बिगिनिंग में, अरे इतना पाप किया था, मरते मरते नारायण बुलाया तो सीधा विष्णु दूत आके उसको बचा के लेके चले गए, यमदूत को भेज दिए, बस आपको लेना क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इतना नाम घर में बैठ के हर रोज थोड़ा थोड़ा लेना है तो जितना भी पाप सब सब निकल जाता है और भगवान के धाम जा सकते, कितना आसान है ना, सुखदेव गोस्वामी बहुत आसान है। तब परीक्षित महाराज को थोड़ा शांति मिलता है, हाँ अच्छा फिर अच्छा ठीक है। और पूरा छठा स्कंद चालू होता है पोषणम, किस प्रकार भगवान उनका कृपा से जीव को पोषण दे रहे हैं, वो छठा स्कंद है, वो भगवान का दिल है, हार्ट है, चेस्ट, दैट इज सिक्स्थ कैंटो। और छठा स्कंद हो जाता है, छठा स्कंद में देखिए इतने सारे भक्त हैं, वित्रासुर हैं, इंद्र हैं, कैसे भगवान चित्रकेतु महाराज है, कैसे भगवान सबको रक्षा कर रहे हैं छठा स्कंद में। और फिर सातवां स्कंद आता है, सातवां स्कंद और आठवां स्कंद को उती बोलते हैं, उती, सातवां स्कंद कैंटो सेवन है उती, और मनवंतरा है आठवां स्कंद, ये दोनों दोनों हाथ है सातवां और आठवां। सातवां स्कंद में उती मतलब क्या है, आपका स्वभाव, तो व्यक्ति का कैसे अलग अलग स्वभाव रहता है, बाप है अंडरवर्ल्ड का नंबर वन डॉन, बेटा है क्राइम ब्रांच का नंबर वन ऑफिसर, कौन सा लीला है सातवां स्कंद में, नरसिंह देव, हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप अंडरवर्ल्ड का सब नंबर वन डॉन था उस टाइम का, विष्णु का सबसे बड़ा वही था राक्षस शत्रु था, लेकिन बेटा विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था, एक ही परिवार में बाप बेटा, देखो 36 का आंकड़ा एक ही परिवार में, तो बाप का स्वभाव और बेटे का स्वभाव पूरा 180 डिग्री उल्टा, ये सातवां स्कंद उती। फिर आठवां स्कंद क्या है, मनवंतरा, मनवंतरा मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतरा रहते हैं और उस 14 मनवंतरा का डिटेल में कथा आठवां स्कंद में बताते हैं। और आठवां स्कंद का समाप्त होता है फिर नौवां स्कंद जो है ईशानु कथा, ईशानु कथा, ईशा मतलब स्टोरी, कथा मतलब बोलना, छोटे छोटे कथा बोलना। नौवां स्कंद पढ़ेंगे तो छोटा 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 कहानी भरा है, पूरा सूर्य वंश का कहानी भरा है, सूर्य देव से शुरू करके पूरा सूर्य वंश है, और उसी में रामायण आता है, रामचंद्र आता है इक्ष्वाकु में, और फिर चंद्रवंश शुरू करते हैं। चंद्रवंश में बोलते 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 कृष्ण का जन्म होते हैं, यदु याति महाराज से, यदु से जन्म होते कृष्णा, और कृष्ण का लीला चार श्लोक में खत्म कर देते हैं। तो परीक्षित महाराज बोलते रुको 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 रुको, ये के चार श्लोक में आपने कृष्ण लीला खत्म कर दिया, अरे डिटेल में सुनना चाहता हूँ कृष्ण लीला, बताओ डिटेल में, ऐसा नहीं चलेगा चार श्लोक में। तो फिर दसवां स्कंद शुरू होता है, पूरा कृष्ण लीला को डिटेल में बताते हैं, चार वॉल्यूम हो जाता है पूरा, सबसे बड़ा स्कंद हो जाता है, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, हस्तिनापुर लीला, सब होता है। ये हो गया आपका दसवां स्कंद। क्या है आश्रय, आश्रय मतलब भगवान का चेहरा। देखिए राधा वृंदावन बिहारी दर्शन दे रहे हैं, उनका चेहरा देखिए, वो चेहरा है दसवां स्कंद, किस प्रकार मुस्कुरा रहे हैं, आश्रय देते हैं उनको, मुस्कुराते हुए देखते ही आपका जितना भी कष्ट है सब कुछ मिट जाता है, ये है आश्रय। और फिर ग्यारहवां स्कंद जब जाते हैं, ग्यारहवां स्कंद क्या है, भगवान का ललाट, फोरहेड। और ग्यारहवां स्कंद में भगवान उद्धव को गीता सुनाते हैं, उद्धव गीता, पूरा फिलोसफी। और फिर अंत होता है बारहवां स्कंद, बारहवां स्कंद में परीक्षित महाराज चले जाते हैं गोलक वृंदावन, मतलब प्रलय हो जाता है सृष्टि का, किस प्रकार जीव अपना अहंकार से मुक्त होकर अगर गोलक वृंदावन जाता है तो सबसे बड़ा यही प्रलय है, और उसको बारहवां स्कंद बोला गया है। इस प्रकार संपूर्ण भागवत पुराण, इस प्रकार भगवान का चरण कमल से अभी आप जब दर्शन करेंगे तो जो हमने सुना है उसको मनन करते हुए दर्शन कीजिए, चरण कमल से भगवान का मुखारविंद तक, और इस प्रकार भी भगवान का आप दर्शन कर सकते हैं भागवत पुराण के साथ राधा वृंदावन बिहारी का दर्शन। तो आज भाद्र पूर्णिमा का इस पावन तिथि के ऊपर हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण में उन्होंने जो मैसेज दिया है ताकि हमारे हृदय में वो बस जाए और हमारा मनुष्य जीवन भी उसके ऊपर पालन करते हुए मनुष्य जीवन को संपन्न करके उनके धाम में हम जा पाए। जय श्रीमद् भागवत पुराण की जय, जय श्री प्रभुपाद की।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु, प्रभु जी ने बहुत ही अच्छी तरह हमें भद्र पूर्णिमा के बारे में और भागवत श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया, तो प्रभु जी का हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे तीन बार हरि बोल बोलकर, हरि बोल हरि बोल।